ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा हरे राम। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस शुभ पावन अवसर पर। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव और वो भी उनकी पुण्य भूमि तपोभूमि श्री नासिक धाम में हम मना रहे हैं। भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के हेतु और अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु। यदि हम कलयुग में अपने निजी व्यक्तिगत जीवन को देखें तो हम सब का जीवन हमारे स्वयं के ऊपर एक भार है इस भौतिक संसार में, और हम सब मिलकर इस पृथ्वी पर भार हैं। शारीरिक रूप से नहीं, क्योंकि शारीरिक रूप से पृथ्वी कितना भी भार ले सकती है, परंतु भगवान श्री राम के विमुख होने के कारण जो हमारा भौतिक इंद्रिय भोगी जीवन, वो हम हमारे स्वयं के लिए और इस पूरी पृथ्वी के लिए भार है, भार के समान। और इसलिए भगवान अवतार लेते हैं इस भार को कम करने के लिए, जो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है भोग करने की, और वो भी भगवान से अलग भोग करने की प्रवृत्ति, इसका संहार करने हेतु, और हमारे अंदर जो कण मात्र भगवान के प्रति भक्ति का एक अंश है, उस अंश को बचाने के लिए और उस अंश को बढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं भगवान। इसलिए भगवान, उनके जन्म और उनके कर्म दिव्य बताए गए हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, क्योंकि जब तक हम भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हम इस भौतिक संसार के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो बहुत ही अनोखा है, और विशेष रूप से हम साधकों के लिए जो साधना भक्ति में लगे हैं और इस मोहजाल के जंजाल से बाहर निकलना चाहते हैं, हमारे लिए हमने चर्चा की प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए और उन्होंने धर्मनिष्ठ होते हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वेच्छा से वनवास में जाना निश्चित किया। अब ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग, ऐसा तप भगवान दिखाए ताकि हमारे अंदर जो ये भोग की प्रवृत्ति है वो खत्म हो सके। भगवान के त्याग और वैराग्य को देखकर ये हमारा जो हृदय है वो द्रवित हो, इसलिए भगवान ऐसी कड़ी लीला करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं वन गमन लीला भगवान की। कैकेयी ने अपने दो वर मांगे और महाराज दशरथ अब असहाय अवस्था में कुछ कर नहीं सक रहे, तो प्रभु श्री राम इसे छोटी सी बात मानकर अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए वन की ओर वो निकले। आज सुबह हमने चर्चा की कि तमसा नदी के तट पर पूरी अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के साथ साथ आई, और वहां से प्रभु श्री राम ने अपनी योग माया शक्ति से उन्हें गाढ़ निद्रा में डाल दिया और मध्य रात्रि सुमंत्र जी से कहा कि निकलो यहां से। अब आगे जब केवल सुमंत्र जी, वो और सीताराम लक्ष्मण ये गंगा के तट पर पहुंचे, तो अब बहुत ही सुंदर प्रसंग रामायण में सुनाया गया है। ये प्रसंग हमारे मन को हरने भी वाला है, मन को मोहित भी करता है, मन को द्रवित भी करता है, मन को शुद्ध भी करता है, और हमें बहुत गहरी शिक्षाएं भी ये प्रसंग देता है। और ये सुंदर प्रसंग है जब प्रभु श्री राम केवट की भक्ति को स्वीकार करते हैं। रामायण में राम और केवट की जो भक्ति है उसे बहुत अनोखे तरीके से बताया गया है। जब प्रभु श्री राम गंगा के तट पर पहुंचे तो उनके साथ सुमंत्र जी और निषाद राज गुह, ये दोनों थे। अब निषाद राज वो उस प्रांत के नाविकों के सरदार थे, और उनमें से एक ये नाविक था केवट। तो प्रभु श्री राम इनके साथ अब गंगा पार करनी है, साथ में इन नाविकों के जो सरदार हैं तो वही सारी योजना करेंगे गंगा पार कराने के लिए। परंतु प्रभु श्री राम केवल केवट के नाव में बैठना चाहते थे। तो देखा कि केवट किसी दूरी पर था, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं ही उस नाविक को बुलाया, हे नाविक अत्र आगच्छ। तो प्रभु श्री राम स्वयं बुला रहे हैं, आवश्यकता नहीं थी, लक्ष्मण सेवक के रूप में हैं, निषाद राज है और निषाद राज का पूरी प्रजा है, तो क्यों स्वयं प्रभु श्री राम पुकारे? क्योंकि प्रभु श्री राम जानते थे कि ये केवट जो है बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा में है। तो लक्ष्मण अचरज कर रहे थे, निषाद राज अचरज कर रहे थे। अब देखिए इनका आश्चर्य कैसे बढ़ता जाएगा इस प्रसंग में। तो जैसे ही भगवान ने केवट को पुकारा तो केवट भगवान श्री राम को देखते ही कहता है, यहां मत आना, मेरी नाव में बिल्कुल मत आना, दूर से ही मना कर रहा है, दूर भगा रहा है भगवान को और कहता है उस तट पर जाओ, वहां पर कमर तक का पानी है, चलकर चले जाओगे, गंगा पार कर लोगे, कोई नाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां बिल्कुल मत आना, मेरी नाव में तो बिल्कुल। तो अब लक्ष्मण और निषाद राज आश्चर्यचकित, ये क्या तमाशा हो रहा है, ये इस नाविक की इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत कि ये प्रभु श्री राम को मना कर रहा है। अरे सारी अयोध्या नगरी इनके एक एक शब्द के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर रही है, सर्वस्व, और यहां पर ये स्वयं पुकार रहे हैं इसे, ये मना करता है। परंतु प्रभु श्री राम जानते थे इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। तो रामायण में सबसे पहले बताया गया है कि प्रभु श्री राम गंगा जी का दर्शन कर रहे थे और गंगा जी को अपना दंडवत किया उन्होंने, और गंगा जी का नाम यहां पर सुरसरी कहा गया है। सुरसरी का अर्थ है, सरी का अर्थ होता है नदी और सुर का अर्थ होता है देवतागण। तो देवता लोक जो देवगण हैं उनकी जो नदी है वो है गंगा देवी। ये हमारे लोक की नदी नहीं है, ये तो हमारे ऊपर कृपा हुई है कि गंगा जी यहां पर भी हैं। तो ये ब्रह्म लोक से एक गंगा नदी की धाराएं बहती हैं और अनगिनत धाराओं में से एक धारा हिमालय पर पड़ती है, और वो एक धारा है जो हम इस पृथ्वी पर गंगा जी से कहते हैं, तो उसका नाम है सुरसरी। तो भगवान सबसे पहले अपना दंडवत गंगा जी को दिए और इस नाविक की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं भगवान, जो मना किए हैं अब। तो भगवान पूछे, भाई क्यों नहीं ले जाओगे? तो अब ये नाविक थोड़ा निकट आता है, निकट आकर वो भगवान से कहता है कि आप ही है ना राम? तो रामचंद्र जी कहे, हां मैं ही हूं, दशरथ नंदन राम। तो मैंने सुना कि विश्वामित्र मुनि के साथ आप जब जनकपुर के रास्ते पर जा रहे थे तो आपने एक पत्थर से नारी को उत्पन्न किया। ये कौन सी कथा थी? अहिल्या उद्धार। तो यहां पर अहिल्या उद्धार, ये कथा विश्व प्रसिद्ध हो चुकी थी और बहुत साल पहले प्रभु श्री राम ने ये लीला की थी उनके विवाह से पहले। तो अहिल्या को श्राप मिला था, गौतम मुनि उन्होंने श्राप दिया था अहिल्या को कि पत्थर बन जाओ, क्योंकि इंद्र वो अहिल्या के साथ संग करना चाहते थे और इंद्र वो गौतम मुनि का भेष धारण कर कर आए। अब एक कथा ऐसी है कि अहिल्या पहचान गई थी कि ये मेरे पति नहीं, ये इंद्र है, परंतु अहिल्या कुछ बोली नहीं। तो गौतम ऋषि समझ गए और गौतम ऋषि ने फिर अहिल्या को श्राप दिया कि तुम्हारी बुद्धि इतनी भी नहीं कि तुम अपने पति को भी नहीं पहचान सकती। वो बुद्धि है या पाषाण है, पत्थर है, तो पत्थर बन जाओ। अब देखिए ऋषि मुनि भी बहुत इनके साथ सावधानी से रहना पड़ता था, तुरंत श्राप दे दिया पत्थर बन जाओ। तो अब अहिल्या वो ऐसे ही हाथ जोड़े वो पत्थर बन गए, ऐसी मूर्ति हो गई। ऐसा नहीं कि अलग से कोई गोल पत्थर हो गई, वो मूर्ति के रूप में परिणित हो गई। तो जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर के रास्ते पर थे तो उन्होंने देखा, इस आश्रम को देखा, पूछा कि ये आश्रम किसका आश्रम था, अभी तो कोई रहता नहीं वहां पर, किसका आश्रम था और ये किस स्त्री की मूर्ति है। तब विश्वामित्र मुनि ने कथा सुनाई और विश्वामित्र मुनि अब प्रभु श्री राम से कहे कि ये अहिल्या आपके ही प्रतीक्षा में खड़ी है यहां पर, क्योंकि जब अहिल्या ने क्षमा याचना मांगी तो गौतम ऋषि ने फिर थोड़ा सा पिघले वो और कहे कि ठीक है, जब प्रभु श्री राम अवतरित होंगे तो उनके चरण रेणु से तुम्हारा उद्धार होगा। और अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि त्रेता युग सत्ययुग के बाद कैसे आया, जबकि द्वापर युग आना चाहिए, दूसरा युग, सत्ययुग के बाद द्वापर युग आना चाहिए फिर त्रेता युग आना चाहिए था। तो यह एकमेव कारण बताया गया है कि अहिल्या के उद्धार के लिए भगवान ने, क्योंकि ये वरदान मिला था कि त्रेता युग में उद्धार होगा तो तब तक पत्थर के रूप में खड़ा रहना होगा, तो भगवान अहिल्या के उद्धार हेतु युग को पहले कर लिया। देखिए भगवान की कृपा, पूरे युग को प्रीपोन कर लिया। तो विश्वामित्र मुनि अब भगवान से कहे कि भाई जो विधि में लिखा गया है उसे पूरा करो। तो प्रभु श्री राम थोड़ा शर्माए कि ये हालांकि पत्थर है परंतु एक स्त्री का रूप है, इसे मैं चरण कैसे लगाऊं, क्योंकि प्रभु ने तो एक पत्नी व्रत भी लिया आगे चलकर, तो कैसे मैं चरण लगाऊं इसे। तो विश्वामित्र मुनि कहे कि अब भाई प्रश्न हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप हमसे पूछ रहे हैं, ये विधि का विधान लिखते हैं आप, जो कुछ हो रहा है ये सब आपके ही निर्देशन में हो रहा है, तो आप ही प्रश्न पूछिए और आप ही उत्तर दीजिए। तो भगवान अब समझ गए, तो उन्होंने फिर अपना चरण लगाया और तुरंत फिर अहिल्या अपने रूप में आ गई और फिर भगवान को नमस्कार दंडवत कर फिर से अपने पति गौतम ऋषि के पास गई, मुनि पत्नी थी वो। तो ये लीला ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी, कि अरे ये जो दशरथ नंदन है ये अपने चरण लगाकर पत्थरों से मनुष्य पैदा करते हैं। तो इसका मर्म भी हमें समझना चाहिए कि हां, जब तक प्रभु श्री राम की चरण रेणु हमारे माथे पर नहीं आएगी तब तक हम मनुष्य नहीं कहलाने योग्य। क्या कहलाने योग्य है? पत्थर। 84 लाख योनि में भी नहीं, पत्थर बस। जब तक कि प्रभु श्री राम के चरण रज हमारे माथे पर नहीं आते। तो अब केवट भगवान से कहने लगा कि भाई देखिए, ये हमने सुना है, ये बात सच है कि नहीं बताओ। आपने आपका चरण उस पत्थर पर रखा और आपके चरण रेणु के वजह से वो पत्थर नारी में परिणित हुआ, बताओ सही बात है कि नहीं? तो प्रभु श्री राम अब अपने बारे में, वो तो एक नम्र अवतार लिए, अपने बारे में कैसे बताएं? बचपन में हम ये सुंदर, हमारे एक बाल विहार का क्लासेस हुआ करता था, उसमें हम ये सुंदर भजन गाया करते थे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। इसमें अब श्री राम और केवट का संवाद बताया गया है। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, सिया पार हमें उस तट पहुंचाओ। तो प्रभु केवट को कहते हैं कि केवट तुम्हारा काम है लोगों को इस तट से उस तट ले जाना। तो मैं, सीता और लक्ष्मण आए हैं, तो प्रभु कहे केवट तुम हमें पार कराओ, इस तट से उस तट ले जाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट कहता हमारी सुनो है प्रभु, मैं अन्य यात्रियों को तो ले जाता हूं, परंतु आप जो यात्री के रूप में आए हो बहुत खतरनाक हो। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना हो ये पड़े, मैं गरीब हूं और मेरा एक निर्धन सा गरीब सा छोटा सा परिवार, मेरी एक बीवी है और मेरे बच्चे। तो ये जो आप आपके चरण रखोगे ना इस पर, मेरी नाव पर, तो होगा क्या कि ये नारी में परिणित हो जाएगी और आप तो चले जाओगे आपकी नारी के साथ, और फिर इस नारी को, दो दो नारी को कौन संभालेगा? पहले से एक है वही महंगा पड़ रहा है। और मंदी भी चल रही है, दो दो को कौन संभालेगा? इसे एक बार एक व्यक्ति ने अखबार में इश्तेहार दिया, वाइफ वांटेड। तो तुरंत फोन कॉल पे फोन कॉल आने लगे, यू कैन टेक माइन। तो यहां पर केवट अब प्रभु श्री राम से कहता है कि प्रभु आपके जो चरण धूली है ना उसकी माया बहुत भारी है, मैं गरीब हूं ये नाव मेरी नारी बन जाएगी। नहीं, तो इसमें तीन चीज होगी। देखिए, एक तो मेरी नाव जाती रहेगी जो मेरी जीविका है, इस नाव के वजह से मेरी जीविका चल रही है। ये तो नाव चली जाएगी, मेरी जीविका जाएगी, और फिर वो जो अहिल्या, वो पत्थर से जब अहिल्या बनी तो वो भी वो मुनि के साथ चली गई। तो यदि मैं ये जो नाव नारी में परिणित होगी इसे यदि मैं किसी काम पर भी लगाऊं तो ये चली जाएगी। और फिर यदि वो रहे तो उसे संभालू कैसे मैं? तो हर दृष्टिकोण से मैं खतरे में हूं। तो अब वो भगवान को कहते हैं कि ये मत समझिए कि मैं आप में दोष दृष्टि देख रहा हूं, यह आपका दोष नहीं है, यह आपके चरणों का भी दोष नहीं है, गड़बड़ है वो जो रज है ना उसमें, वो आपके जो चरण रज है उसमें सारी गड़बड़ है। तो अब लक्ष्मण ये सब अब तक सुन रहे थे, तो लक्ष्मण अपने बहू को ऊपर करने लगे और अपना जो धनुष बाण है उसे संभालने लगे। तो तुरंत अब इन्होंने देख लिया, केवट ने देख लिया कि लक्ष्मण चौकन्ना हो रहे हैं कुछ प्रतिकार करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत ही ऐसे शब्द बोलते हो? तो केवट चिल्लाने लगा, मैं सौगंध लेता हूं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की, यदि बिना चरण धोए मेरे नाव में पैर भी रखा तो, ये आज मैं सौगंध लेता हूं। और ये चाहे लक्ष्मण फुफकारता रहे कितना भी, देखिए केवट की हिम्मत। तो केवट ने ऐसे क्यों कहा कि ये लक्ष्मण चाहे फुफकारता रहे, क्योंकि ये पिछले युग की कथा कि प्रभु नारायण वो क्षीर सागर पर अनंत शेष पर लेटे हुए, माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, तो क्षीर सागर में एक कछुआ बाहर आया और वो कछुआ नारायण की चरण धूली लेना चाहता था। तो उसने अपना छोटा सा मुंह बाहर किया और भगवान के चरण थोड़े अनंत शेष से बाहर आए हुए थे, तो जो क्षीर सागर का जो क्षीर है वो भी स्पर्श हो रहा था। तो ये कछुआ ये अपनी गर्दन बाहर निकाले और भगवान के चरणों से चरण धूली चाटने के लिए इसने अपना जिह्वा बाहर निकाली, तो लक्ष्मी देवी देख ली, तो लक्ष्मी देवी ने देख लिया और तुरंत शेषनाग अनंत शेष को इशारा किया तो फुफकारने लगे शेष। तो जैसे फुफकारा तो कछुआ गया अंदर, डर गया बेचारा। तो ये कछुआ ये केवट बना त्रेता युग में। तो इसने अब क्षीर सागर में जाने के बाद ये प्रण लिया कि मैं इन भगवान के अगले अवतार में छोड़ूंगा नहीं, इनकी चरण धूली लेकर रहूंगा मैं, और विशेष रूप से शेष अनंत शेष और लक्ष्मी के सामने। देखिए इसे कहते हैं आध्यात्मिक बदले की भावना। तो अब नारायण लक्ष्मी भी और शेष भी तीनों साथ में हैं, तो क्या मेल लगा है। और ये कछुआ जो केवट बना ये भी वहां पर। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है जो भी तुम्हें करना है तुम्हारी जीविका को संभालने के लिए वो करो। तो अब केवट भगवान से पूछता है तो क्या करूं, आपके चरण धोने होंगे, धोऊं आपके चरण? एक भी रजकण नहीं होना चाहिए, मेरी नाव में पैर रखने से पहले। अब यहां पर केवट भगवान के मुख से यह बुलवाना चाहता था कि हां धो। तो भगवान कैसे बोलें कि मेरे चरण धो? तो भगवान ने यह कह दिया, जो तुम्हारी जीविका के लिए ठीक है वो करो, नहीं जाओ वहां, जाओ कमर तक पानी है, वहां से चलकर चले जाना, चलो चलो समय बर्बाद मत करो, और भी यात्री आने वाले हैं। और प्रभु श्री राम को थोड़ी जल्दी लगी थी, क्योंकि पता नहीं और अयोध्या से कितने आ जाए यहां पर, फिर से वो ले जाने के लिए तैयार हो जाए। तो बोले, अरे मेरे पास समय नहीं है। तो केवट कहता है, मेरे पास भी समय नहीं है। तो प्रभु कहे, क्या करना चाहते हो आप? मैंने बता दिया क्या करना चाहता हूं, बोलो करूं। तो भगवान बोले, क्या चरण धोना है? तो अब भगवान कहे, हाँ ठीक है मेरे चरण धो। भगवान ने कह दिया। तब केवट ने भगवान से केवल एक बार नहीं पूछा, धो लूं धो लूं धो लूं, तीन बार पूछा। जैसे भगवान भी कहते ना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, न आस्तेव न आस्तेव, वैसे तीन बार पूछा। तो तीन बार भगवान ने, हां धो लो धो लो धो लो, और फिर लक्ष्मण जी की ओर और लक्ष्मी जी की ओर देखते हुए केवट कहा, अब रोको, आप फुफकारो, कितना फुफकारते हो, क्योंकि अब बीच में नारायण बोल रहे हैं, तीन बार बोले हैं, धो लो धो लो धो लो। अब लक्ष्मण जी को कुछ याद नहीं कि ये कछुआ था और ये कछुआ केवट बना, तो वो अचरज में पड़ गए कि ये क्या दोनों में चल रहा है। केवल राम और केवट जानते थे कि क्या चल रहा था। अब देखिए यहां पर रामायण में बताया गया है कि शिवजी इस दृश्य को देख रहे थे कैलाश से। तो शिवजी इस दृश्य को देखते हुए अब वो हंस रहे हैं। तो पार्वती देवी पूछती हैं तुरंत, तो तुरंत बताना होगा क्यों हंसी आई। तो शिवजी की उत्प्रेक्षा देखिए, बहुत ही सुंदर है। शिवजी कहते हैं कि ये कौन सी अनोखी लीला है हे भगवान आपकी, ये गंगा कितनी बड़ी है, दो तीन फरलांग या आधा एक मील होगी एक तट से दूसरे तट, ये गंगा कितना कितनी चौड़ी है यहां पर। तो सबसे पहले शिवजी उनको देखते हुए कहते हैं पार्वती से कि ये वामन देव के रूप में इन्होंने केवल अपने दो पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया था, केवल दो पग में। तो क्या ये दो फरलांग की जो नदी है इसे पार नहीं कर सकते? नाव की क्या जरूरत है? ये सब क्या सौदा चल रहा है, वाद विवाद, निघौरा जिसे कहते हैं, बार्गेनिंग, क्या चल रहा है? तो सबसे पहले वामन देव का उदाहरण याद करते हैं कि दो पग में सारी सृष्टि नाप दी और यहां पर ये दो फरलांग के लिए अब इतना वाद विवाद चल रहा है। फिर शिवजी मुस्कुरा रहे हैं ये सोचते हुए कि अरे यही श्री राम आगे चलकर पूरे समुद्र को नाप लेंगे, ये नदी क्या है, इस समुद्र के ऊपर सेतु बनाने वाले हैं। और यही नहीं, इनके एक दास हनुमान जी, वो केवल इनका नाम लेते ही वो छलांग लगाकर पूरी समुद्र को पार करने वाले हैं। तो कहे कि हनुमान जी ने पूरे समुद्र को पार किया प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करने मात्र से। अरे ये तो छोड़ दीजिए, ये नदी छोड़ दीजिए, ये गंगा जी छोड़ दीजिए, ये समुद्र छोड़ दीजिए, ये पूरा जो भव सागर है इतना विशाल, ये पूरा भव सागर कोई तर जाएगा यदि वो प्रभु श्री राम का नाम एक बार अपनी जीवा पर ले लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेने मात्र से वो जीव मुक्त हो जाता है, भव सागर पार कर लेता है। तो वही मूर्तिमान राम इस नदी को पार करने के लिए इतने चिंतित हो रहे हैं। तो शिवजी मुस्कुरा रहे थे ये सब दृश्य देखकर कि आपकी लीला अपरंपार, आप अपरंपार, आपकी लीला अपरंपार। तो अब केवट जब तीन बार सुन लिए भगवान से कि हां धो लो, जितना धोना है धो लो, तो तुरंत केवट अब अपनी कुटिया से एक कटोता लाता है, एक कटोरा जैसा। अच्छा, केवट ये भी बोलता है कि आपने पत्थर को नारी में परिणित कर दिया, तो पत्थर जो है वो बहुत कष्टा होता है, बहुत कठोर होता है, और मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है, तो यदि पत्थर नारी बन सकती है या बन सकता है, तो ये लकड़ी लड़की क्यों नहीं बन सकती या नारी क्यों नहीं बन सकती। तो अब ये जब ये कटोरा लाता है तो ये भी लकड़ी का कटोरा होता है जिसमें पानी लेकर आता है। तो भगवान के चरण को स्पर्श करता है और पानी डालता है और रगड़ना शुरू। देखिए सौभाग्य इस केवट का कि अपने हाथों से स्पर्श कर रहा है और रगड़ रहा है तलवे। अब जैसे ही भगवान के तलवों को रगड़ना शुरू किया केवट ने, तो भगवान के चरण उस कटोरे को स्पर्श किए, वो लकड़ी का कटोरा, तो उसको जब स्पर्श किया भगवान ने तो लक्ष्मण ने देख लिया। तो लक्ष्मण अब केवट से कहते, ये क्या है, ये तो नारी में परिणित नहीं हुआ कटोरा तुम्हारा, ये क्या बोलते रहते हो तुम कि मेरी नाव नारी बन जाएगी, ये तुम्हारा कटोरा तो बना नहीं। तो केवट प्रभु श्री राम की तरफ देखकर कहता, ये बीच में बोला तो कोई नहीं बैठेगा नाव में। और लक्ष्मण जी की बात सही थी कि अब इतने दूर चलकर आए, कितने पत्थरों के ऊपर चले प्रभु श्री राम, कोई भी नारी में परिणित नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो रास्ते में कितनी नारियां होती फिर। तो यहां पर पूछ रहे हैं, अरे ये कटोरा भी नहीं परिणित हो रहा है, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो। परंतु वो समझ नहीं रहे थे कि ये भक्त और भगवान में क्या आदान प्रदान चल रहा है। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम चुप रहो, और फिर ये रगड़ने लगा। ये पूरा जितना पानी था पानी उड़ेल कर रगड़ा पूरा, और फिर उसे उसने उसी पात्र में लिया उस पानी को। दो पात्र थे, एक पात्र से पानी डाल रहा था, दूसरे पात्र में उसे ले रहा था। और जैसे ही वो पूरा पानी खत्म हुआ तो पी गया वहीं पर उनके सामने ही। ऐसा नहीं कि कहीं अकेले में कोने में छिपकर, वहीं प्रभु श्री राम के सामने पूरा पी गया। तो रामचंद्र जी कहे हो गया, हो गया कैसे, अभी तो और 10 बार करना होगा, एक भी कर्ण नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी देना था ना, बीवी बच्चों को, नहीं तो कोर्ट मार्शल हो जाता वहां पर। तो फिर से फिर धुलाई शुरू हुई, रगड़ रगड़ कर, और फिर वो चरणामृत ले जाकर अपनी पत्नी को, बच्चों को, और पूरे झोपड़ी में छिड़काव हुआ, फिर से आकर धोना शुरू। तो सारे देवता ऊपर आ गए, सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, और सारे देवता इस केवट की जो सुकृति, इसका सौभाग्य को देखकर इसके गुणगान करने लगे, और मानो कि उसका केंद्र अपनी तरफ खींचते हुए केवट को कहे थोड़ा 2-3 बूंद यहां पर भी ऊपर छिड़काओ। परंतु केवट पूरा मग्न था, वो बिल्कुल यहां वहां कुछ नहीं देख रहा था, वो बस एक भी कण कुछ नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा की है रामायण में, ध्यान से सुनिए। केवट ने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराने से पहले अपने को और अपने परिवार को भवसागर पार करा दिया। बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि भगवान पार हुए नहीं, उससे पहले केवट और उसका परिवार भवसागर पार कर गया उनके चरणामृत को ग्रहण कर। और यह कहा गया है कि प्रभु श्री राम को पार कराने का आश्वासन केवल केवट ने दिया कि हां मैं करवाऊंगा पार, तो भगवान ने उसको भवसागर पार करा दिया। अभी तक भगवान पार नहीं हुए हैं, सेवा हुई नहीं है, लेकिन केवल सेवा की इच्छा और प्रण दिया है कि करवाऊंगा, केवल उतने मात्र से यह है प्रभु श्री राम कि यदि कोई उनकी सेवा की इच्छा भी रखे तो प्रभु श्री राम उसको भवसागर पार करा देते हैं। यह है उनकी कृपा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रभु को पार कराने से पहले उसने स्वयं को और अपने परिवार को भवसागर पार करा दिया। अब प्रभु श्री राम नाव की ओर निकले, तो अब गंगा जी अपने स्वामी को देख रही हैं, और गंगा जी ने सबसे पहले भगवान के पदनक को देखा। पदनक किसे कहते हैं? अंगूठे के नाखून को देखा भगवान के। तो गंगा जी क्या देख रही हैं? अपने जन्म स्थान को देख रही हैं। वामन देव की लीला में जब उन्होंने 2 पग अपना ऊंचा किया त्रिविक्रम के रूप में, तो क्षीर समुद्र को भेदते हुए भगवान का नाखून वहां के जल को नीचे लाया, और वो है गंगा जी, जो कि सत्य लोक में फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण किया, और वहां से फिर धाराएं बहने लगी सुमेरु पर्वत से नीचे, फिर हिमालय में एक धारा, और ये जो हम इस पृथ्वी पर गंगा को देखते हैं। तो ये भगवान का चरण धुवन है, भगवान विशेष रूप से उनके पदनक, क्योंकि उनका पदनक वहां पर भेदा था, तो भगवान का जो ये नख है, ये नख से गंगा जी उत्पन्न हुई। तो गंगा जी अब सोच रही हैं कि यह देखा जाता है कि जब कोई जन्मता है और कुछ वर्ष जीता है और वो अपने जन्म स्थान जाता है अपने जन्म स्थान को देखने के लिए, हम सब भी जहां जन्मे हैं तो जाते हैं, ये मेरा जन्म स्थान है, मैं यहां पर जन्मा, इस गली में, इस मोहल्ले में, या इस अस्पताल में, इस वार्ड में, इस पलंग पर। तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर जाता है जन्म स्थान को देखने के लिए। कभी ऐसा देखा गया है कि जन्म स्थान उस व्यक्ति के पास आए? ऐसा सुना कभी? यहां सुन रहे हैं हम। गंगा जी कहीं और गई नहीं, गंगा जी का जन्म स्थान गंगा जी के पास आ रहा है। कौन है गंगा जन्म स्थान? पदनख। तो गंगा जी अब उछल उछल कर तट से बाहर आ रही हैं अपने जन्म स्थान का स्वागत करने के लिए। देखिए कितनी सुंदर है रामायण, इतनी सुंदर तरीके से बताया जा रहा है कि रामचंद्र जी कहीं पर भी रहें, चाहे अयोध्या में रहें या वन में रहें, उनके भक्त हर जगह पर हैं। तो अब वो नाव पर बैठे, और जब नाव पर बैठे सीताराम लक्ष्मण, तो गंगा जी में और इस केवट में संधि हुई, कॉन्ट्रैक्ट, कि जितनी देरी हो सके उतनी देरी लगाओ, जितना विलंब हो सके उतना विलंब करो। तो प्रभु श्री राम देख रहे थे बहुत धीरे धीरे, तो वो पूछे केवट से कि केवट तुम नाव ठीक से नहीं चला रहे। तो केवट कहता मैं क्या करूं, आज गंगा जी का प्रभाव देखो। और ये दोनों में ये संधि हुई थी। तो गंगा जी अपना अपनी लहरों को ऊंचा ऊंचा कर, तो केवट गंगा जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे और गंगा जी की लहरें केवट को देखकर मुस्कुरा रहे, और इन दोनों को देखकर प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे थे, और प्रभु श्री राम को देखकर सीता और लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये क्या प्रभु की लीला, शुरुआत में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो विलंब हो रहा था, जितना ज्यादा संग मिल जाए, क्योंकि इसके आगे तो फिर ये इनकी गाड़ी तो चलती रहेगी 14 वर्ष तक, कहां कहां जाएंगे पता नहीं। तो ये विलंब कर रहे थे। तो अब पार हुए, यदि हम वो प्रतीक्षा में रहेंगे विलंब के, तो फिर अगली रामनवमी तक यहीं पर बैठना पड़ेगा। तो हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, पार हुए। तो जब पार हुए तो प्रभु श्री राम उतरे, अब बहुत नरम और मृदु वो सुरसरी की जो रेती है उस पर। और अब तक प्रभु श्री राम नहाए नहीं थे, क्योंकि बिना नहाए निकले थे और चलते चलते फिर रात्रि में सोए, और सुबह उठते ही सुमंत्र जी को समझा बुझा कर भेजना था, और सुमंत्र और गुह वहां तक खड़े थे तट पर, वो भी अब तक गए नहीं हैं। तो वो उस तट पर खड़े हैं सब कुछ देखने के लिए कि इसके आगे आगे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री राम गए, और भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पश्चात चित्रकूट गए। तो चित्रकूट पहुंचने तक गुह और सुमंत्र वहीं पर थे गंगा के तट पर। तो अब जैसे ही सीताराम लक्ष्मण उतरे अगले तट पर, तो विनोद में भगवान ने केवट से पूछा, थोड़ा जाकर देखो तुम्हारी नाव नाव ही है ना, संभालो जाकर, नारी में तो परिणित नहीं हुई। तो केवट देखो कितना चतुर था। तो केवट भगवान से कहता है, अरे वो मजाल नारी में परिणित हो जाए, चरण धोया किसने था? ये रगड़ रगड़ कर आपके चरणों को मैंने धोया था, एक भी कण नहीं छोड़ा है। तो मजाल ये नाव नारी में परिणित हो जाए। प्रभु श्री राम हंसने लगे। तो अब रामचंद्र जी ने सोचा कि मैं इस केवट की सेवा को स्वीकार किया हूं तो इसकी उतराई तो देनी होगी ना, मजदूरी तो मजदूरी देनी होगी। तो भगवान यहां वहां देखने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो फकीर के रूप में पॉकेट पॉकेट ही नहीं, पॉकेट में क्या होगा। तो यहां वहां देखने लगे तो माता सीता समझ गए कि प्रभु श्री राम अब कुछ ढूंढ रहे हैं इस केवट को देने के लिए। तो माता सीता के शरीर पर कुछ आभूषण थे, वो आभूषण इसलिए थे कि कैकेयी चाहती थी कि सीता सारे आभूषण निकाले, परंतु वशिष्ठ मुनि ने रोक दिया था। कैकेयी को कहा कि देखो तुमने वर मांगा है राम के वनवास का, तो तुम केवल राम तक सीमित रहो, उससे आगे मत जाना। इस सीता के ऊपर कुछ नहीं कह सकती तुम, ये सीता अपने वस्त्र और अपने आभूषण पहनकर जाएगी, इसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, चुप रहो तुम। कई कई को चुप करवा दिया। इसलिए आगे चलकर भी जब सुग्रीव से रामचंद्र जी मिलते हैं तो सुग्रीव माता सीता के आभूषण उनके नूपुर दिखाते हैं, तो वो आभूषण पहने थी। अब देखिए माता सीता के आभूषण कोई साधारण नहीं, महाराज जनक की पुत्री राजकुमारी और प्रभु श्री राम की पत्नी, उनके आभूषण कोई ऐसा नहीं कोई इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान से कुछ ले लिया था, या आजकल तो सोने हीरे जवाहरात भी लोग नहीं पहनते, प्लास्टिक पहनते। तो माता सीता ने देखा कि प्रभु श्री राम ढूंढ रहे हैं इसे मजदूरी देने के लिए कुछ, तो माता सीता ने अपनी मुद्रिका निकाली, सोने की मुद्रिका, अंगूठी जिसमें माणिक्य जड़ा था, हीरा जड़ा था, वो करोड़ों अरबों रुपए की होगी। वो देखिए इन नाविक को क्या मिलने वाला था, उसे उतराई में साधारण तक क्या मिलता, कुछ दो चार पैसे। यहां पर माता सीता ने अपनी सोने की हीरे मणिक द्वारा जड़ित मुद्रिका निकालकर और छिपाते हुए प्रभु श्री राम के हथेली में छोड़ दी, केवट को दिखाया नहीं। तो यहां पर यह बताया गया है कि ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का धर्म है कि जान ले, पति मांगने से पहले जान लेना चाहिए कि क्या चाहिए, ये माता सीता सिखा रही है। और बिल्कुल भी माता सीता हिचकिचाई नहीं, अरे भाई ये करोड़ों की ये अंगूठी, ये क्या, ये केवट को देने के लिए, बिल्कुल हिचकिचाई नहीं हो। तो एक पत्नी का धर्म है कि जब पति किसी शुभ कार्य के लिए पैसा देना चाहे तो पत्नी को रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अरे इसमें तो 10 साड़ी आ जाती मेरी, जैसे कि बलि महाराज, जब बलि महाराज वामन देव को सब कुछ दे रहे थे, सब कुछ लूट रहा था, दे नहीं रहे थे, लूट रहा था सब कुछ, तो बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली वो सराहना कर रही थी अपने पति, हां दो सब कुछ दो, ऐसा नहीं कि अरे अपने कपाट में तिजोरी में कुछ रखना है, सब क्या सब कुछ दे रहे, बिल्कुल नहीं, सब कुछ देते रहो। तो ये एक पतिव्रता स्त्री पत्नी का धर्म निभा रही थी। खैर आजकल तो सब कुछ दूसरा उल्टा हो रहा है कि बेचारे पति के पास कुछ रहता ही नहीं, कुछ बाकी नहीं रहता, तो क्या देगा और किस मुंह से मांगता मांगेगा फिर। हमारे बंबई के एक भक्त बता रहे थे, एक बहुत प्रसिद्ध इंटरनेशनल मैगजीन है जिसका नाम है वोग, यदि आपने सुना होगा तो वो इस मैगजीन में एक इश्तेहार बता रहे थे, और ये इश्तेहार था एक लेडीज पर्स का। तो लेडीज पर्स दिखाया, छोटा सा दिखने वाला, तो पूछा कि कल्पना करो कितने का होगा ये लेडीज पर्स। तो हम जिस भक्त से पूछा था वो उसे तो कुछ जानकारी थी नहीं, तो कह दिया होगा कुछ 300-400 रुपए का होगा। तो हंसने लगी थी, 300-400। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक लेडीज पर्स 4 लाख रुपए का। केवल 4 लाख रुपए। तो जब इन्होंने 4 लाख, और फिर ये एक कार्यक्रम में गए, किसी उद्योगपति के कार्यक्रम में घर में, तो वहां पर वही वो ब्रांड का, वो जो किसी ब्रांड, ये ब्रांडेड होते हैं सब, जैसे कि ये जो आजकल लोग कपड़े पहनते हैं उसमें यदि एक ये टिक मार्क आ जाए उसका, नाइकी का, तो 1000-2000। तो हम बोले कि भाई यहां से गुरुवार बाजार से एक टी शर्ट ले आओ, हम मार देंगे वो टिक मार्क। तो वो उस कार्यक्रम में गए, उस कार्यक्रम में एक महिला के पास वही ब्रांड का वो पर्स था। तो ये भक्त देखना चाहते, मैं देखना चाहता हूं कि वो किससे बना है, और ऐसा नहीं कि वो हीरे जवाहरात से कुछ बना वो पर्स, ऐसे ही जो साधारण जो मटेरियल होता है उस मटेरियल का बना, और उसमें केवल एक ही, केवल चेन एक ही खाना है अंदर, और कुछ नहीं, खाली खाली तो रहेगा, 4 लाख दिया है जब, उसमें भरने के लिए के पैसे तो बचने चाहिए ना। तो यहां पर माता सीता ने अपनी वो अनमोल मुद्रिका निकाल कर दे दी, तो प्रभु श्री राम अब उस मुद्रिका को केवट को देना चाहे। तो केवट ने भगवान को रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, ये बात सही नहीं। तो भगवान केवट से कहते हैं कि केवट मजदूरी लेने में शर्माना नहीं चाहिए। तो केवट ने भगवान से मजदूरी किस बात की, तो तुमने मुझे उस तट से इस तट ले आया, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है। देखिए केवट कैसे सुंदर वाक्य बोलता है। केवट भगवान से कहता है कि देखिए, हालांकि मैं मजदूरी लेता हूं परंतु आपसे नहीं लूंगा। तो भगवान ने कहा क्यों, मुझसे क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये व्यवसाय का नियम है कि एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति होते हैं तो आपस में लेन देन नहीं होता। तो लक्ष्मण फिर फुफका, इनको नाविक कहता तुम? तो प्रभु श्री राम भी थोड़ा अचरज किए, एक ही व्यवसाय के व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं होता उसमें। तो केवट कहा हां, एक नाई दूसरे नाई से कभी पैसा नहीं लेगा, बाल कटवाएगा, एक धोबी दूसरे धोबी से कभी लेन देन नहीं होगा। तो एक ही व्यवसाय के आपस में लेन देन नहीं रखते। तो प्रभु श्री राम पूछे कि अब ठीक है, तुम्हारा व्यवसाय तो मैं समझ गया, तो मैं कैसे उसी व्यवसाय में। तो केवट कहता है, प्रभु आप आए मेरे घाट और मैंने आपको पार किया इस घाट, जब मैं आऊं आपके घाट तो आप मुझे पार करो आपके घाट। तो आपका व्यवसाय है क्या? यही है, लोगों को इस घाट से उस घाट पहुंचाना। जो घाट घाट का पानी पी रहे हैं इस भौतिक संसार में, उनकी कॉलर पकड़कर उनको इस घाट से अपने घाट पहुंचाना, भव सागर से पार कराकर अपने धाम पहुंचाना। बोलो सियावर रामचंद्र की। अरे तो आप तो हम सब नाविकों के सरदार हो, मैं तो केवल ये नदी में इस तट से उस तट ले जाता हूं लोगों को, आप तो भव सागर में इस तट से उस तट ले जाते हो। तो एक ही व्यवसाय हुआ आपका और मेरा, लोगों को पार कराना। परंतु केवट बहुत चतुर था, तो केवट कहता है कि आपको ये जो कुछ देना है ये बाद में देखेंगे। हालांकि मन में तो केवट सोच रहा था कि मुझे जो कुछ मिलना था तो मिल गया, कई गुना ज्यादा मिल गया। तो केवट भगवान से कहता है कि आप जब वापस लौटेंगे 14 वर्ष के बाद फिर देखेंगे क्या लेन देन करना है। तो यहां पर केवट भगवान से वचन ले लिया कि लौटते समय भी यहां से पार होना है। देखिए कितना चतुर था ये, लौटते समय भी वचन ले लिया और प्रभु श्री राम ने वो वचन पूरा किया। रामायण में बताया गया है कि जब रावण का संहार हुआ और पुष्पक विमान में सारे वानर को बिठाकर प्रभु श्री राम निकले लंका से अयोध्या की ओर, तो जिन जिन को वचन दिया था उनका वचन पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को नीचे उतारा। और ये पुष्पक विमान ऐसा था कहीं पर भी उतर सकता था, इसको कोई एयरपोर्ट या रनवे की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी उतर सकता था। तो जिन जिन को वचन दिया था उन सब का वचन पूरा करने के लिए भगवान ने पुष्पक विमान को वहां वहां नीचे उतारा। तो जब गंगा के तट पर आया पुष्पक विमान ऊपर, तो भगवान ने पुष्पक विमान को उस गंगा के तट पर नीचे उतरवाया और फिर पुष्पक विमान से नीचे उतरे, केवट की नाव पर चढ़े। उसी तरीके से पहले धुलाई हुई और फिर चढ़ाई। तो पुष्पक विमान को कहा कि तुम उड़कर उस तट पर जाओ, मैं नाव से आऊंगा। यह है प्रभु का प्रेम अपने भक्त के प्रति। तो इसलिए केवट ने, वो जानते थे केवट कि ये लौटते समय भी इन्हें यहीं से आना होगा। हालांकि केवट उस समय तो ये नहीं जानता था कि पुष्पक विमान मिल जाएगा और फिर इनका ऐश्वर्य ऐसा होगा कि अब तो पैदल जा रहे हैं और फिर फ्लाइट में आएंगे, नहीं वो ये सब नहीं। परंतु फिर भी वचन ले लिया, वो जानते थे कि ये जो वचन देते हैं ये है रघुकुल के, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये वचन दे देंगे, वचन ले लेता हूं और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए वो मुद्रिका लिए नहीं, आते समय देखेंगे, आप आओ फिर देखेंगे। और एक ही व्यवसाय है तो लेन देन किस बात का। तो देखिए यहां पर केवट की चतुराई बताई गई है। ये बताया गया है कि एक जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है। इसलिए एक श्रील प्रभुपाद बंगाली कहावत कहा करते थे, जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। जो भगवान श्री कृष्ण और रामचंद्र जी को भजता है वो बड़ो चतुर, और जे कृष्ण त्यजे वो कुकुर। कुकुर का अर्थ कुत्ता। तो जो कृष्ण को भजता है वो बहुत चतुर होता है। जैसे कि इस भौतिक संसार में लोग बहुत चतुर होते हैं भोगने के लिए, ऐशो आराम, इंद्रिय भोग के लिए। जब हम वायुसेना में थे तो हमें एक व्यक्ति बता रहे थे कि तीन दोस्त थे, हरप्रीत सिंह, बलबीर सिंह, दिलजीत सिंह। ये तीनों आर्मी में थे, भारत की आर्मी में थे। तो ये पंजाब में इनकी पोस्टिंग हुई थी और ये तीनों सिंह जाते थे शाम को बार में पीने के लिए, मदिरालय में। तो वहां पीने जाते तो जैसे ही जाते तो तीनों के लिए तीन ग्लास बनते, एक एक ग्लास एक के लिए। अब हुआ क्या कि बलबीर सिंह और दिलजीत सिंह की पोस्टिंग हो गई, तो बलबीर सिंह वो चला गया बंबई और दिलजीत सिंह चला गया कलकत्ता। तो अब हरप्रीत सिंह अकेला बेचारा अब जाता, वो कहता कि तीन बनाओ, उनकी याद में पीऊंगा मैं। तो जो बार टेंडर वो तीन ग्लास बनाता, तो ये दिलजीत सिंह, ये बलबीर सिंह और ये हरप्रीत सिंह, और फिर वो दोनों भी पी लेता। तो अब एक महीने के पश्चात वो जब आया उस मदिरालय में तो उसने कहा कि दो ही बनाना। तो अब दो ही ग्लास बनाना, तो ये बेचारा जो बारमैन था, बारटेंडर, ये थोड़ा मायूस हो गया। अरे क्या कुछ हो गया क्या, दो ही मंगा रहे हो? तो ने कहा हाँ दो ही मंगाओ, मैंने छोड़ दी शराब। मैं हरे कृष्णा का भक्त बन गया, मैंने शराब छोड़ दी है, केवल दो ही लाना ग्लास, ये उनके नाम की है। तो लोग चतुराई से इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, परंतु जो असली मेधा है, बुद्धि है, वो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण राम की भक्ति में नहीं लगते तब तक नहीं आई। इसलिए यहां पर केवट से हम सीखते हैं कि केवट ने अपनी भक्ति कैसे चतुराई से भगवान के समक्ष प्रकट की और भगवान की कृपा कैसे चतुराई से ग्रहण की उन्होंने। तो भगवान की जो चरण रेणु हैं, भगवान के चरण रज की महिमा बहुत बताई गई है। इसलिए जैसे केवट ने कहा कि यदि आपका चरण रज मेरी नाव को स्पर्श हो जाएगा तो मेरी जीविका चली जाएगी, तो यहां पर यह सीखने मिलता है कि यदि हमें हमारी जीविका चाहिए तो प्रभु के चरण रज नहीं मिलेगी। जीविका का अर्थ है केवल ये शरीर, ये जो बाहरी प्राण को चलाने के लिए। बाहरी प्राण किसे कहते हैं? पैसे को। एक आंतरिक प्राण होता है जो हमारे अंदर का प्राण, और बाहरी प्राण इसे कहते हैं। तो यदि हमें चुनाव करना है कि क्या चाहिए हमें, परंतु केवट जैसे चतुर भक्त यदि हम बन जाएंगे तो दोनों मिलेगा, भगवान का चरणामृत भी और जीविका भी मिलती रहेगी। क्यों? क्यों केवट की जीविका भी संभाल कर भगवान ने रखी और चरणामृत भी दिया? क्योंकि केवट उस नाव को केवल भगवान के ही सेवा में उपयोग में लाता था, इसलिए। तो वो जीविका, वो व्यवसाय जो भगवान की सेवा में संलग्न हो, उसमें भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम, कि उसकी जीविका भी संभाल कर रखते हैं और अपनी कृपा भक्ति शुद्ध भक्ति भी साथ साथ देते हैं। तो ये हम केवट के उदाहरण से सीखते हैं। और इसके पश्चात अब भगवान स्नान करना चाहते थे गंगा में। सीता और लक्ष्मण ने स्नान कर लिया था क्योंकि भगवान अब सुमंत्र जी को भेजने में उलझे थे सुबह सुबह, और फिर तुरंत वहां से निकलना था तो स्नान करने का समय नहीं था। तो फिर भगवान ने फिर गंगा स्नान किया, क्योंकि गंगा जी तड़प रही थी कि ये नाव में बैठे परंतु मुझे स्पर्श नहीं हुआ। तो फिर भगवान ने गंगा जी को भी संतुष्ट करने के लिए फिर गंगा स्नान किया। अब वहां से जब भगवान आगे निकले भरद्वाज ऋषि के आश्रम में और उसके पश्चात चित्रकूट और फिर सुमंत्र और गुह, वो वहां से फिर लौटे। तो इस वर्ष हम कथा यहीं तक लेंगे, क्योंकि अब कोई नहीं है इनके साथ, सीताराम लक्ष्मण इनके साथ, ये अब तीनों अकेले अब वन में निकले हैं। क्योंकि अब तक फिर भी इनकी निगाह थी, सुमंत्र और गुह इनकी निगाह थी, परंतु इसके पश्चात अब ये अकेले निकले। आज का दिन बहुत महत्व है, महत्वपूर्ण दिन है, जब भगवान अवतरित हुए। इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान नवमी की तिथि, आज नवमी की तिथि है, कौन सा महीना है, चैत्र का महीना, इसे मधुमास भी कहते हैं। तो चैत्र के मास मधुमास में भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए। भगवान श्री कृष्ण भी अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए थे। कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे भगवान श्री कृष्ण? रोहिणी नक्षत्र में। प्रभु श्री राम अभिजीत मुहूर्त में और भौमवार, मंगलवार था वो, भौमवार के दिन पैदा हुए। और भगवान पैदा होते ही रोने लगे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी पैदा होते ही रोने लगे। क्यों? क्योंकि फिर चैतन्य महाप्रभु पैदा होते ही ये सब उनको चुप कराने के लिए हरि 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 कहते, तो सबके मुख से भगवान का नाम निकले, इसलिए भगवान रोते रहे। हालांकि भगवान हमारे तरह नहीं, जैसे कोई साधारण शिशु जब पैदा होता है तो रोना शुरू करता है, जैसे कि ये कहा गया है कि हम जब पैदा हुए तो हम रोए जग हंसे, ऐसा हुआ ना, हम जब पैदा हुए तो हम रो रहे थे और सारा जग हंस रहा था, अरे अरे राजा बेटा पैदा हुआ है, लाला पैदा हुआ है। तो हम जब आए तो हम रोए जग हंसे, परंतु ये कहा गया है कि हमें ऐसी करनी करनी है कि जब हम जाएं तो हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी होनी चाहिए। ये नहीं कि रोते बिलखते, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये छूट गया ये मिल जाता, इतना पैसा और आ जाता, रोते रोते नहीं। तो भगवान रोए ताकि सभी आकर उनकी सेवा में लगे तुरंत। और माता कौशल्या, इनके विषय में बताया गया है कि माता कौशल्या का ऐसा सौभाग्य था कि वो व्यक्तिगत रूप से 24 घंटे बाल राम, छोटे से रामचंद्र जी की सेवा में लगती। और चारों तरफ वातावरण किस प्रकार का था, शीतल मंद सुगंधित समीर, सुगंधित समीर हवा बह रही थी, केवल हवा नहीं सुगंधित हवा। कुसुमित वन गिरजन मनियार, और जितने सारे गिरी पर्वत थे उसमें जो मणि वो खोद खोद कर निकालने पड़ते थे, परंतु वो बाहर ऐसे जैसे मानो आकाश के मंडल से सारे तारे उस पर्वत पर गिर गए हों, ऐसे सारे पर्वत चमकने लगे इन मणियों से प्रभु श्री राम जब जन्मे। और जितने भी नदियां थी सारी नदियों में अमृत आ गया, केवल जल नहीं अमृत। श्रव ही सकल सरित अमृत धारा। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को सूचना दी, सारे देवता तुरंत अयोध्या नगरी चलो। तो सारे देवता गंधर्व किन्नर ये सारे अप्सराएं ये सभी अपने अपने विमानों में जितने सारे पुष्प थे देवलोक में सारे पुष्प लिए, जितने वाद्य थे सारे वाद्य लिए, और ये रास्ते में कीर्तन करते हुए प्रभु श्री राम का कीर्तन करते हुए अप्सराएं नृत्य करती हुई विमान में, और ऐसा नृत्य ये अप्सराएं कर रही थी कि आज तक देवलोक में भी किसी ने भी ऐसा नृत्य इनका नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जन्मे हैं। और सारे अयोध्या नगरी पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आकाश दिखाई नहीं दे रहा था, केवल पुष्प ही पुष्प। तो सोचिए अयोध्या वासियों का क्या भाग्य था। और सारे ऋषि मुनि दिव्य मंत्रोच्चारण स्वस्ति वाचन करने लगे, और फिर ये मंगल गीत गाया गया जो आप लोगों को ये पर्चा दिया हुआ है। ये मंगल गीत भगवान के जन्म की स्तुति में गाया गया। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए, जो कि दीन दयाल हैं, जिनको दीन दयाल कहा गया है। दीन दुखियारों का उद्धार करने हेतु भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। और जितनी सारी माताएं थी वो इतना हर्षित हुई, और जितने मुनिगण थे उनके मन को भगवान ने अपने सुंदर अपने सौंदर्य से हर लिया। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी। भगवान अवतरित हुए तो अपने सारे आयुधों के साथ, जैसे भगवान श्री कृष्ण वो कंस के कारागृह में अपने सारे आयुध के साथ अवतरित हुए, तो माता कौशल्या ने भी जब सारे आयुधों के साथ प्रभु राम को देखा तो कहा कि नहीं, ये सब निकालिए, ये सब आयुधों के साथ मैं आपको दूध कैसे पिलाऊंगी, निकालो ये सब आयुध आपके। और अभिराम ये लोचन अभिरामा ये आंखों के लिए एकदम सुखद इनका सौंदर्य दिख रहा था। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और वनमाला धारण किए हुए इतना सुंदर लग रहे थे कि जैसे मानो कि शोभा और सौंदर्य का कोई सिंधु हो। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कही विधि करहु अनंता। बहुत ही सुंदर ये वाक्य है कि हे भगवान श्री राम आप अनंत हो, तो आप अनंत, आपकी लीलाएं अनंत, आपके गुण अनंत, आपके नाम अनंत, और मेरे पास केवल दो हाथ है जोड़ने के लिए। आप अनंत परंतु मैं केवल दो हाथ आपके सामने जोड़ रहा हूं, बस यही मेरी काबिलियत है। कई कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कही विधि करहूं अनंता। माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण ध्वनंता। कि आपसे ही सारे वेद पुराण ध्वनित होते हैं, और ये पूरी जो माया है जिसके चंगुल में हम सब हैं उसके अधिष्ठात्र देव आप हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारे। सब गाइए, मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहार, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी, भूषण वन माला नयन विशाला लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहू अनंता, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण ध्वनंता, जोर से कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहू अनंता, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण ध्वनंता, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी,
कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना पित माना वेद पुराण ध्वनंता जय जय सिया राम 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 साथ बोलिए जय जय सिया राम 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 जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय पतित पावन जय सिया राम पतित पावन जय सिया राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।
तो भगवान अवतरित हुए हैं इस कलयुग में हर क्षण अपने नाम के रूप, और भगवान श्री राम का जो नाम है ये तो विशेष रूप से उन्होंने अपने नाम की महिमा अपने उस अवतार में भी बता दी त्रेता युग में, कि जब सेतु बांधा जा रहा था समुद्र पर, ये कथा हमने सुनी है कि एक एक पत्थर पर राम का नाम लिखा जा रहा था, और जब फेंका जा रहा था तो पत्थर तैर रहे थे। प्रभु श्री राम वो भी अचरज में, ये पत्थर कैसे तैर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक पत्थर लिया और फेंका। अब सोचिए प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है, तो जब स्वयं प्रभु श्री राम अपने हाथों में पत्थर लेकर फेंके तो क्या होगा उसका, क्या हुआ? अच्छा, डूब गया, पत्थर डूबा और हनुमान जी पीछे से मुस्कुराने लगे। तो अब बड़ा राम शर्मा गए कि ये हनुमान जी इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकता है पर्वत के समान, वो तैर रहे हैं और मैं ये छोटा सा एक कंकड़ सा फेंका, ये डूब गया। तो हनुमान जी कहे दो कारण है। सबसे पहला कारण, आपसे ज्यादा बलवान है आपका नाम, तो नाम तो आपने लिखा नहीं इसलिए वो तैरेगा कैसे। और दूसरा कारण यह है कि हे प्रभु, आपको जिसने फेंक दिया या आपने जिसको फेंक दिया वो तो डूबने ही वाला है। तो ये है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। एक नीति की एक छोटी सी कथा है जिसमें बताया जाता है कि कुछ राक्षस, या उन्हें राक्षस नहीं कहेंगे, निषाद जाति के वो चोर थे। तो वो चोरी करने के लिए वन में निकले। तो अब देखिए, वो सत्युग के चोर तो वार्ता भी संस्कृत में किया करते थे। तो संस्कृत में ये चोर वार्ता कर रहे थे। तो वो जो उनका सरदार था, जो निषाद राज था, वो चोरों को कहता है कि हम वन में विचरण के बहाने जाएंगे और वन का धन चोरी करेंगे और फिर नदी में तैरेंगे और कोई भय मत रखना। तो ये चार वाक्य अब ये संस्कृत में अपने चोर अनुयायियों को सुनाता है सरदार। और इसके पश्चात इसका उद्धार ये वैकुंठ प्राप्त करता है। हालांकि है चोर, चोरी करने निकला, परंतु जो इसने ये चार वाक्य कह दिए संस्कृत में, इसका अर्थ पहले हमने बोल दिया, वन में विचरण करने के बहाने जाएंगे, वन का धन चोरी करेंगे, नदी में तैरेंगे, कोई भय मत रखना। तो ये संस्कृत में कहता है वने चरामो, वन में विचरण के बहाने जाएंगे, वसु च हरामो, वन का धन हरण करेंगे। तो संस्कृत में कहा वसु च हरामो, नदी में तैरेंगे नदी स्तरामो, और कोई भय अपने मन में मत रखना, न भयम स्मरामो। तो हुआ क्या कि ये जब ये चार वाक्य बोल रहा था, वने चरामो, वसु च हरामो, नदी स्तरामो, न भयम स्मरामो, तभी किसी दूसरे चोर के गुट ने तीर चलाया और इस पर तीर चला और ये यहां पर ये हरामो स्मरामो रामो करते करते मरा और वैकुंठ प्राप्त हुआ इसे। यह प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। एक राजा हुए महाराज गुहक। ये महाराज गुहक, इनके हाथ से ब्रह्महत्या हुई। तब ब्रह्महत्या का पाप लगा, ऐसा पातकी हो गया इनके साथ। तब ये वन में गए, इसका कोई पश्चाताप है, इसका कुछ निवारण होगा ढूंढने के लिए। तो एक ऋषि का आश्रम देखा उन्होंने, ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया कि ऋषि मुनि का आश्रम है, यहां पर कुछ निवारण मिलेगा ब्रह्महत्या के पाप का। तो वहां पर वो ऋषि मुनि नहीं थे, उनके पुत्र थे। तो उनके पुत्र से महाराज गुहक ने सब बताया कि मेरे हाथ से ब्रह्महत्या हुई है, तो अब बताओ कि इसका निवारण कैसे हो। तो ऋषि पुत्र ने कहा, तीन बार राम का नाम उच्चारण करो अपनी जीभा से, तीन बार राम का नाम उच्चारण करने से ब्रह्महत्या का पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, अरे तो तीन बार क्या, मैं 300 बार ले लूंगा, चार बार लूंगा। तो राम 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 चार बार ऐसे कहते हुए वो आश्रम से बाहर निकल रहा। और तभी ये ऋषि पुत्र के जो पिता, वो ऋषि मुनि, वो स्नान करते हुए करने के पश्चात आ रहे थे। तो इन्होंने जब महाराज गुहक को देखा अपने आश्रम से बाहर निकलते हुए तो पूछा, तो महाराज गुहक ने कहा कि यह आप ही का आश्रम है, वो बालक कौन है? वो मेरा पुत्र है। अरे उसने तो, आपका पुत्र तो क्या पुत्र है, तो सब क्या हुआ क्या? तो महाराज गोहक ने बताया कि ब्रह्म हत्या का पाप मुझे चढ़ा था और उसने कहा कि क्या कहा उसने? तो महाराज गोहक थोड़ा सहम गए, तो थोड़ा गुस्से में लगते हैं, क्या बताओ क्या कहा उसने? आपके पुत्र ने कहा कि मैं 3 बार राम का नाम लूं तो मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो अब ये ऋषि आग बबूला हुए, उस नामुराद की ये हिम्मत, तो ये भी डर गए। उसको जाकर बाहर बुलाए, तुम अभी इसी वक्त इसी क्षण बाहर निकलो, मुंह मत दिखाना मुझे, यही सिखाया तुम्हें मैंने। तो ऋषि पुत्र कांप रहे, महाराज गुहक कांप रहे। तो ऋषि ने कहा, इस महाराज ने ब्रह्म हत्या की और इस ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण के लिए तुमने कहा 3 बार राम का नाम लेना होगा। अरे तुम्हें मैंने सिखाया नहीं था कि 1 बार लेना काफी है? ये 3 बार लेने की क्या आवश्यकता है? और महाराज गुहक से कहा कि भगवान श्री राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई यदि 1 बार भी ले ले तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामायण में तो यहां तक बताया गया है कि यदि हम प्रभु श्री राम के सामने, आज रामनवमी का सुंदर पर्व है, प्रभु श्री राम का दर्शन हमारे सामने है, तो आज के दिन हमें भगवान श्री राम के सामने कौन सी याचना करनी चाहिए? ये स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं अपने मुख से रामायण में, सक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति याचते अभयम् तु सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम् मम। ये प्रभु श्री राम का व्रत है। और अब तक हम जान गए होंगे कि जब प्रभु श्री राम कोई व्रत लेते हैं तो वो व्रत कितना सुदृढ़ होता है। तो वो कहते हैं ददाम्येतद् व्रतम् मम, ये मेरा व्रत है। हम सबको प्रभु श्री राम आज के दिन बोल रहे हैं, ये प्रभु श्री राम अपने मुख से ये हम सबको जोर जोर से गर्जना करते हुए बोलते हैं कि ये मेरा व्रत है कि जो मेरे समक्ष आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर ये कह दे तव अस्मि, हे प्रभु श्री राम आज से मैं आपका, अर्थात और किसी का नहीं, आज से मैं तव अस्मि आपका हे भगवान। तो भगवान कहते हैं अभयम तु सर्वदा तस्मै, उसे मैं हर क्षण उसकी रक्षा करता हूं, हर स्थिति में हर जगह हर क्षण उसकी रक्षा मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से करता हूं। तो यदि हमें भगवान श्री राम के इस व्रत को अपने जीवन में सफल बनाना है, विशेष रूप से आज के इस रामनवमी के पर्व पर, तो हमें केवल करना क्या है, आज उनके सामने हाथ जोड़कर केवल इतना कहना है प्रभु आज से मैं आपका, और उसे निभाना भी है। कई बार लोग इतना कह देते हैं आज मैं आपका, नहीं आज से मैं आपका, तव अस्मि। और यही प्रभु श्री राम के अवतार की महिमा है कि केवल उन पर स्मरण करने मात्र से, उनके विषय में उनके नाम उनकी कीर्ति की चर्चा करने मात्र से, उनका नाम उच्चारण करने मात्र से इस प्रकार का उद्धार हमारे लिए लिखा गया है। जैसे कि इन सब भक्तों के विषय में हमने सुना, लक्ष्मण सीता केवट सुमंत्र जी गुह, यहां तक कि ये निषाद, ये चोर जिसने चोरी करने के लिए निकला परंतु मुंह से, और महाराज गुहक, तो फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं? इसलिए विशेष रूप से आज के दिन हम प्रभु श्री राम के समक्ष यही प्रार्थना रखेंगे कि मैं आपका बना रहूं और आपकी सेवा में एक सेवक के रूप में बना रहूं। और इस कलयुग में वो सेवा कौन सी है? भगवान का निरंतर नाम लेते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राम नवमी महामहोत्सव की, श्री नासिक धाम की, पंचवटी क्षेत्र की, तपोवन धाम की, भगवान श्री राम के भक्तों की, शील प्रभुपाद की, निताई गौ।